सब लोग इकट्ठा आ गए। बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति ध्यान करते थे, आचरण करते थे, अभ्यास करते थे। तो ऐसे करते समय, करते करते हमें याद आता है कि बुद्ध के जमाने में भी पूर्ण कालीन यानी फुल टाइमर्स थे और भविष्यकालीन यानी पार्ट टाइमर भी थे, जिन्होंने ग्रह त्याग करके बुद्ध के यहां आके दीक्षा ली थी। वो लोग पूर्णकालीन काम करते थे, अपना आचरण करते थे, ध्यान करते थे और बुद्ध प्रचार, धम्म प्रचार के लिए बाहर जाता था। लेकिन ज्यादा दिन, ज्यादा से ज्यादा दिन वो बाहर रहते थे और 3-4 महीने के लिए वो पुनः वापिस अपने यहां आते थे। वहां आके वो लोग जैसे हम आज कहते हैं वर्षावास, तो वर्षावास उस वक्त होता था, वही वर्षावास में सब लोग इकट्ठा होके जो पूर्णकालिक थे वो धम्म अभ्यास करते थे, धम्म आचरण भी करते थे और जो भी है, जो गलतियां होती हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर हमने गलतियां की हैं उसका वो उस वक्त पाप इसलिए करते थे और सबके सामने आपका मन वो खुला करते थे और उसी वक्त क्षमा याचना करने के बाद उन्हें माफी मिलती थी। ऐसे समय दूसरा जो भाग हम देखते हैं अंशकालिक लोग, ये लोग अपना परिवार, अपना संसार, अपना राजकीय जवाबदारी और नागरिकत्व का जो जिम्मेदारी है वो सब संभाल के ये लोग भी बुद्ध धर्म का आचरण करते थे और जो समय बचा है वो धर्म कार्य के लिए देते थे। और उस वक्त जब ये भिक्षु पूर्णकालीन भिक्षु वर्षावास करते थे उस वक्त वो भी वहां पुरुषकालीन जो लोग हैं वहां आते थे और उन्हें मदद करते थे, उन्हें चिवर दान करते थे। और आप सबको पता है कि पूर्णकालीन लोग जब प्रचार और प्रसार के लिए जाते थे तो उन्हें किसी बात की जिम्मेदारी नहीं होती थी, वो सिर्फ अपनी चारिता करने के लिए हर एक घर के सामने जाके खड़े होते थे। लेकिन वर्षावास में अंशकालीन लोग जो थे, उपासक जो थे, वो उन्हें मदद करते थे, अन्नदान करते थे, चिवरदान करते थे और उसी जगह बैठ के वो धम्म ग्रहण करते थे। तो ऐसे करते करते जब बारिश होती थी तो बारिश में वो बाहर नहीं जा सकते थे पूर्णकालीन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बुद्ध के बाद ऐसे होने लगा कि जो पूर्णकालीन लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना छोड़ते थे। और जिस जगह वो बैठ के ध्यान करते थे उन्हें आश्रय मिला था, बागों में, गुहों में, और उसके बाद उन्हें राज आश्रय भी मिलने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वर्षावास जो छोटा था वो लंबा लंबा होते गया और पूर्वकालीन लोग वहीं पे रहने लगे। जो पहला भाग है जो मैंने आपको बताया कि पूर्णकालिक लोग वहां बैठ के प्रारंभ यानी अपने आप को खुला करना, ज्येष्ठ से लेके कनिष्ठ पूर्णकालिक भिक्षु उसी कालखंड में जो गलतियां हुई है उसी वक्त वो क्षमा याचना करते थे। और दूसरा भाग था उसी में वंशकालिक लोग या शिष्य पूर्णकालिक शिष्यों के लिए वस्त्रदान अन्नदान करते थे। तो उसी समय से कार्तिक पूर्णिमा में संघ दिन मनाया जाता, संघ दिन मनाए जाने की जो घड़ी है उसी से शुरू हो गई। तो हम देखेंगे कि आध्यात्मिक समाज जो है समूह से बहुत अलग है और समूह व्यक्ति से बनता नहीं। हम ध्यान वर्ग या शिविर में सहभाग लेते हैं, हम उस वक्त बुद्ध धर्म संघ वंदना करते हैं। और जब हम संघ वंदना करते हैं तो हमें भगवान बुद्ध का जो संघ है श्रावक संघ उसकी याद आती है। तो उस जमाने में जो संघ था वो कैसे था, सुपटिपन्न यानी जो सुख के मार्ग पे आरूढ़ होने वाला या आरूढ़ होता था, उचिपटिपन्न जो सरल मार्ग पे चलने वाला है, न्याय पटिपन्न भगवत जो नियम शिस्तबद्ध जीवन पे आरूढ़ है, सामुचिपटिपन्न भगवत जो सुसंगत के मार्ग पर चलने वाला है। ऐसी ही संघ या आध्यात्मिक समाज चार जोड़ी से और अट्ट मनुष्य से बना है यानी अट्ट पुरुष होकर जो व्यक्ति यानी बौद्ध धर्म में उसे आर्य कहते हैं, व्यक्ति यानी आर्य, उसका अर्थ है उद्दार या श्रेष्ठ। संघ वंदना में उसे संघ सदस्यों का वर्णन व्यक्ति करने का किया है। आध्यात्मिक संघ में जो चार चूड़ी है वो है, ये है श्रोता सकृतागामी अनागामी और अनंत। ये चार चूड़ियां आध्यात्मिक प्रगति उच्च उत्क्रांति की ओर लेके जाती है। तो ये चार जोड़ियां कैसी बनती है, जब हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो हमें संयोजन पता है 10 संयोजन, तो पहला जो श्रोतापन्न अवस्था है उसे प्राप्त करने के लिए हमें 3 संयोजन तोड़ने पड़ते हैं। और आप सभी को पता है सत्कार दृष्टि विचिकित्सा और शील, ये अगर बंधन हमने तोड़ दिए तो हम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। चौथा और पांचवा वंदन जो है वो हम शिथिल करते हैं तो सकृदागामी अवस्था हम प्राप्त करते हैं। और जब हम चौथा और पांचवा वंदन तोड़ते हैं तो अनागामी अवस्था प्राप्त करते हैं। और बाकी के बचे हुए पांच संयोजन वो हम जब तोड़ते हैं तो हम अनंत अवस्था प्राप्त करते हैं। तो ये जो अट्टपुरुष मुक्तला ये चार जोड़ियां जो है ये हमने याद रखनी चाहिए। और हमें पता है कि भक्ति ने हमें सभी को कहा है कि हर एक ब्रह्मचारी ने अवलोकितेश्वर का हाथ बनना चाहिए और सभी ने यही जन्म में श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना चाहिए। तो भाई और बहनों मुझे लगता है अगर इतने ज्येष्ठ ब्रह्मचारी अगर हमारे साथ है तो वो अवस्था हम जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे एफर्ट्स जो है वो हमें लगाने चाहिए। हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने की अवस्था हम बताते हैं लेकिन मन दूसरी ओर रहता है। घर में क्या चला होगा, मेरे ऑफिस में क्या होगा, यही बातें हम हमारी मन में रहती है। लेकिन सच्चे दिल से काया वाचा और मन से अगर इस प्रवाह में हम बहते गए तो मुझे आशा है कि हम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद व्यक्ति यानी आर्य जो बदलाव के लिए तैयार है, जो बदलना चाहता है वही व्यक्ति हो सकता है, जो बदलना नहीं चाहता वो व्यक्ति नहीं बन सकता।
समूह के साथ हमारा संबंध है तो वो बोलना चाहिए। जो व्यक्ति बनता है, बनने का प्रयास करता है, उसे व्यक्ति बनने के लिए हमने प्रवृत्त करना चाहिए, उसे हमें साथ देनी चाहिए, उसे हमें हमारे सामूहिक मन में सहभाग करके लेना चाहिए। इसी तरह से व्यक्ति बन सकता है और आध्यात्मिक समाज में वो आ जाता है और उसके बाद ही वो आहिस्ता आहिस्ता जो भी कुछ संसारिक आसक्ति है या कुछ भी जिम्मेदारियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के प्रवचन की ओर चला जाता है, प्रवचन देता है। जैसे कि हम आज हमारे संघ में बहुत बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, बंदे जी ने हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो भी उनकी जिम्मेदारी थी, कल सुबुद्धि ने बताया है आपने कि उनके पास जब वो लंदन आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने शून्य से सब कुछ निर्माण किया और उनके जो शिष्य हैं उन्हें यहाँ में भेज दिया और बहुत सारा बड़ा संघ हमें आज मिला है, उन्हीं की वजह से मिला है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता संघ की जो जिम्मेदारी है वो अपने शिष्यों के ऊपर दी है। यानी आप देख सकते हैं कि पूर्ण आसक्ति के बाहर निकले हैं बंदे जी और कितना बड़ा दिल है उनका कि वो त्रयस्थ रह के संघ को देखते भी है और सभी को मदद भी करते हैं। तो भाइयों और बहनों, मुझे यही कहना है कि हम खुद अभिमान से कहते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ त्याग किया है। तो पढ़ के सुन के कुछ हमारे अंदर में हमने उसे लाना है, वैसे ही कृति करके, ना कि संघ में आने के बाद हमें कुछ पद मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए या चेयर मिलना चाहिए। जो भी कुछ ये है ये पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत समझदारी से हमारे जो व्यवहार है वो व्यवहार हमने करने चाहिए तो संघ उसके ऊपर उभर सकता है। तो आज इस वक्त इस दिन मुझे ये सब कहने का मौका ब्रह्मचारी अमृतदीप ने दिया है तो मैं मेरे मन से उनका आभार मानती हूँ और मेरा जो प्रवचन है ये मैं समाप्त करती हूँ। चलिए।